ओम शांति। आप सभी सारे दिन से राजयोग के विषय पर सुनते रहे हैं और दादी जी के अवार्ड का कार्यक्रम भी यहाँ चला है, तो आज का ये आपका अंतिम सत्र है। सभी थक तो नहीं गए हैं? सुन पाएंगे एक घंटा और? तो कहते हैं यूं तो मनुष्य भी जीते हैं और पशु भी जीते हैं, लेकिन दोनों के जीवन जीने में अंतर है। मनुष्य बुद्धिमान विवेकशील प्राणी है और इसीलिए वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकता है। पशु चाहे तो भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। पशु इस संसार में जन्म लेते हैं, अपनी रचना रचते हैं, उसकी पालना करते हैं और खाते पीते संसार से चले जाते हैं। अगर मनुष्य भी ऐसा ही जीवन जीता है तो ये उसके जीवन की श्रेष्ठता नहीं कही जाएगी। आपने सुना बाइबल में ऐसा कहा गया, भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न बनाया, अपने ही जैसा भगवान भगवती बनाया, यानी गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को भूलते हैं, परमात्मा को भूलते हैं, तो फिर अपने कर्मों से गिरने लगते हैं और आज ये संसार इस वर्तमान स्थिति में पहुंच गया है। और इसीलिए कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आपने सुना काल चक्र के विषय में कि परमात्मा कलयुग के अंतिम समय पर पुनः इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और सद्धर्म की स्थापना करते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर मनुष्य को पुनः देवत्व प्रदान करते हैं, उसे ऐसे कर्मों की शिक्षा देते हैं जिसे हम कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। कई बार कई भाई बहने हमसे पूछते हैं कि बहन जी क्या राजयोग का अभ्यास करने से हमें कुछ विशेष सिद्धियां मिलेंगी, क्योंकि ऐसा हम भारतीय समाज में देखते हैं कि जो संत हुए या महात्मा हुए हैं वो कुछ इस तरह की चमत्कारिक सिद्धियों का प्रदर्शन करते रहे। वो किसी मंत्र को जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा होती है वो उन्हें प्राप्त हो जाती है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो कोई सोने की अंगूठी है या कुछ भी ऐसी चीज, या वो किसी को भभूत देते हैं और कहते हैं कि आप ये भभूत लेंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे या आपका रोग निवारण हो जाएगा। तो कई बार सचमुच ऐसा होता भी है कि वो भभूत लेने से किसी का कभी कभी रोग दूर हो जाता है। ये वास्तव में उस व्यक्ति की गहरी आस्था होती है जो कार्य करती है। भभूत से तो रोग दूर नहीं होता है, तो इस तरह की सिद्धियों से उन्हें नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, परंतु इससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता, किसी समाज का कल्याण नहीं होता है। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि देखो आपके आश्रम के पास जो नदी बहती है इससे मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ, अग्नि का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। तो स्वामी रामतीर्थ ने उनको पूछा, अच्छा आपको कितने वर्ष लगे ये सिद्धि प्राप्त करने में? तो उन्होंने कहा, पूरे 12 वर्ष का समय मुझे लगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ समय के बाद नदी पार गांव से उनका दूध वाला आया। तो उन्होंने उन सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा, तुमने कितने पैसे में नदी पार की? तो उसने कहा, 2 पैसे में। तो उन्होंने उन सन्यासी को कहा कि देखो, जो काम मेरा दूध वाला 2 पैसे में कर सकता है, उस काम को करने में आपने 12 साल लगा दिए, आपने सन्यास क्यों किया है? आपने सन्यास किया है ईश्वर प्राप्ति के लिए। अगर आपने ईश्वर प्राप्ति की साधना की होती तो अब तक आप ईश्वर के समीप पहुंच चुके होते। तो इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस तरह की उपलब्धियों को जीवन में महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन जीवन चमत्कारिक बन जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाए, ये सबसे बड़ी सिद्धि है जो हमें राजयोग से प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि जो भी हमारी कमियां हैं उनकी तुलना हम अंधकार से कर सकते हैं। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश कर दिया जाता है तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जो भी कमियां विकार हमारे जीवन में हैं, वो किन्हीं गुणों शक्तियों का अभाव है, और यदि हम उनका विकास कर लेते हैं तो स्वतः ही वो समाप्त होने लगते हैं। और यदि हम वर्तमान विश्व पर नजर डालते हैं, घर परिवारों की स्थिति देखते हैं, तो हम कहेंगे घर घर की स्थिति नरक के समान है। तो हम क्यों इसको नरक के समान कह रहे हैं? कहने में तो आप सुन रहे हैं, बहुत उपलब्धियां हैं विज्ञान की आज। दूसरी तरफ लोग कह सकते हैं, हम तो स्वर्ग में रहते हैं, कितनी चकाचौंध की दुनिया है। लेकिन फिर भी हर घर में स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, बदले की भावना है। या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, हर घर में रामायण और महाभारत चलती है, क्योंकि हमारे ये दो शास्त्र मनुष्य की दो कमियों पर बने हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सब जानते हैं रामायण की कहानी। जैसे ही राजा दशरथ ने घोषणा की राम को राज तिलक होगा, तो उसी समय जो केकई की दासी मंथरा थी उसे ईर्ष्या हुई कि क्यों कौशल्या का बेटा राजा बने। रानी केकई ने राजा दशरथ के प्राण रक्षा की है और राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर दिए हैं, और ये सही समय है रानी केकई को अपने वर ले लेने चाहिए। और उसने वही बात उसको समझाई, रानी केकई ने अपने 2 वर लिए, राजा दशरथ से राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी बनी। महाभारत की कहानी भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे, लेकिन कभी भी उनमें आपस में प्रेम नहीं रहा, हमेशा ही राज्य और संपत्ति को लेकर विवाद रहता था, और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के 2 शब्दों ने। क्या कहा उसने? क्या कहा? अंधे का बेटा अंधा। और जैसे ही दुर्योधन ने सुना, इतना अपमान उसे महसूस हुआ कि उसने उसी घड़े निश्चय कर लिया मुझे अपने इस अपमान का बदला लेना है और इसीलिए उसने जुए का षड्यंत्र रचा, न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, धोखे से उनको हरा दिया, अपने अपमान का बदला लिया और पांडवों को वनवास हुआ। 13 साल के बाद जब वो लौट कर आते हैं तो कहा, राज्य तो क्या सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। और उसी बात को लेकर के धर्म युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश। यही कहानी है। तो आज हम देखते हैं घर घर में ईर्ष्या है, भाई भाई में द्वेष है, और द्रौपदी जैसे दोष शब्द तो क्या हम कितने ही शब्द सारे दिन में बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्तियों की कमी है जो आज घर घर नरक है, और उन शक्तियों को प्राप्त करने से हमारा घर घर स्वर्ग बन सकता है? तो आप देख रहे हैं चित्र में अष्ट शक्तियां, ये हमारे जीवन में आवश्यक हैं, और इनमें से विशेष शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज हम किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर सकते। किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार कहेंगे, चार कहा तो आठ कहेंगे। हमारा भाव क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। लेकिन इस प्रयास में कई बार छोटी छोटी बातें विनाशकारी हो जाती हैं। हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें, और अगर मैंने गलती नहीं की तो क्यों सहन करना है, मैंने सहन कर लिया तो मेरी ही गलती मानी जाएगी, और मैंने गलती नहीं की है तो हम कमजोर माने जाएंगे। तो हम कभी भी अपने आप को कमजोर सिद्ध नहीं करना चाहते, तो हम अच्छी तरह से उसका जवाब देते हैं, लेकिन परिणाम हम सब जानते हैं। आए दिन अखबारों में ऐसे समाचार होते हैं। ऐसे ही कुछ समय पूर्व की घटना है यहाँ पास के गांव की, कि एक महिला ने अपनी बेटी को लोहे के सरिये से इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। और कारण क्या था? वो अपनी मौसी के घर अपनी माँ से बिना पूछे चली गई। और क्यों चली गई? उसकी मौसी से, उसकी बहन से उसका काफी समय से बातचीत बंद थी, वो बहुत नाराज थी उससे। और बेटी अगर बिना पूछे चली गई तो माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने उसको इतना पीटा कि जान से ही मार दिया। अब शायद रोज की दिनचर्या में हम इतने चरम तक नहीं पहुंचते हैं, इतना गुस्सा हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी की छोटी छोटी बातों को हम सहन नहीं कर पाते तो हम क्रोध में आ जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। जैसे एक पागल व्यक्ति को भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है। और हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, और उसका प्रभाव कई बार जीवन भर तक रहता है। और इसीलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता है। तो ऐसे शब्द कब निकले? जब हम गुस्से में होते हैं। उससे संबंधों में प्रेम समाप्त होने लगता है, और स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है कि संबंध टूट भी जाते हैं। तो हम क्यों गुस्सा करते हैं? किसी ने मेरी बात नहीं मानी, हम जैसा चाहते हैं वैसा उसने नहीं किया, या हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार उसने नहीं किया, तो हम गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग है। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं है इस दुनिया में। क्या दो मनुष्यों के चेहरे मिलते हैं? करोड़ों अरबों लोग इस संसार में रहते हैं, दो मनुष्यों के चेहरे मिलते हैं? नहीं। तो हरेक के विचार, व्यक्तित्व अलग अलग हैं। तो अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहे तो जरूर उनके सोच मेरे से अलग है, तो हम उनकी बात भी समझने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः जिनसे हमें यह अपेक्षा होती है कि इनको मेरी बात माननी चाहिए, मानो आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके कार्यस्थल के साथी हैं, वो 10 में से 9 बार आपकी बात मानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। कोई एक बार ही ऐसा होता है जब उन्हें ये लगता है कि आप गलत हैं और वो सही हैं, तो वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और यदि उनकी बात सही है तो हमें मान भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपसी संबंधों में जब ये आपसी समझ होती है तभी क्रोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन कई बार हमारा अहम होता है और हम किसी की सही बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। हम दूसरों से जब काम करवाते हैं तो भी हम सोचते हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम नहीं करेंगे, या कोई काम में बार बार गलती करता है तो भी हमें गुस्सा आता है। तो काम करवाने के लिए यदि हमने गुस्सा किया तो काम हो जरूर जाता है, क्योंकि उनको भय होता है। तो वो भय के कारण चुप रहते हैं कि भविष्य परिणाम इसके बुरे हो सकते हैं। लेकिन जब गुस्से से काम करते हैं तो दिल से काम नहीं करते हैं, मजबूरी से काम करते हैं, तो जैसा काम हम चाहते हैं वैसा वो नहीं करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं उनके मन में बदले की भावना बनी रहती है और वो अवसर ढूंढते हैं, और जैसे ही उनको अवसर मिलता है वो आपके लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे, तो उसके कई भविष्य परिणाम घातक हो सकते हैं। और कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो क्या हमें पसंद आता है? हम सोचते हैं काम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा प्रेम से भी कह सकते थे, थोड़ा अच्छे शब्दों में भी कह सकते थे। तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं वही व्यवहार दूसरों को भी हमसे पसंद होता है। ऐसे ही बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हम गुस्सा करके उनको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ भी भय के कारण बच्चे चुप रह जाएंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करने लगेंगे, लेकिन थोड़ा समय, और थोड़े समय के बाद फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वो हमसे गुस्सा करना सीख जाते हैं, और जैसे शब्दों में आप बात करते हैं उन्हीं शब्दों में वो आपका सामना करने लगते हैं, तो हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सही तरीका ये है कि आप यदि बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो उन्हें समय दीजिए, उनसे प्रेम से उनको उनका कारण बताइए कि आप क्यों चाहते हैं ऐसा। क्योंकि आजकल का जो समय है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का समय है, तो वो जब तक कन्विंस नहीं होते उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए तब तक वो आपकी बात मानेंगे नहीं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उनको इतना अच्छी तरह समझा सकें, और यदि समय भी है तो इतना धैर्य नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में शायद उनको न समझ में आए, हमें 2 बार 3 बार 4 बार भी समझाना पड़ सकता है, तो उतना धैर्य नहीं होता है हमारे पास। हम सोचते हैं एक बार समझा दिया ना, समझ नहीं आता है इनको, और दूसरी बार गुस्सा करते हैं, तो बच्चे भी फिर हमारे ही जैसे बनने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमसे ही सीखते हैं कि गुस्सा करके अपनी बात मनवाई जाती है। ऐसे ही कोई हमारी कमी निकालता है, हमारी निंदा करता है, तो भी हम सहन नहीं कर पाते। कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो क्या निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? एक कहावत है कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, तो जरूर इसके पीछे कोई राज होगा जो ये कहावत बनी। तो क्या निंदा करने वाला मित्र हो सकता है ना? क्या समझते हैं, हाँ या ना? तो क्योंकि जो मेरी कमी मुझे बता रहा है वो जरूर कहीं ना कहीं 1% भी मेरे अंदर है, तभी वो बात कही गई। तो यदि हमें ये समझ में आता है कि मेरे अंदर ये कमी है और इसे दूर करना चाहिए, अगर हम उसे सकारात्मक सोचते हैं, तो फिर जीवन में हमारी उन्नति होती है और दूसरों की शिकायत भी खत्म होती है। लेकिन अगर वो हमें दुश्मन लगता है, निंदा करने वाला हमें कभी मित्र नहीं लगता है, वो हमें हमारा दुश्मन प्रतीत होता है, तो उनके प्रति हम मन में बदले की भावना रख लेते हैं, तो क्रोध की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार गलत फहमी भी होती है कि सचमुच वो कमी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन कहने वाले कहते हैं तो हम उनको समझा सकते हैं, और यदि नहीं समझ में आता है तो उस पर ध्यान ही नहीं दें, उसको अपने मन पर ही ना लें। वो हमारे ऊपर है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। हम न चाहें तो कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। यदि हमने किसी बात को स्वीकार नहीं किया है तो उसका मेरे मन पर असर नहीं होगा। एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा किसी बिजनेसमैन के पास गई, उनको अपने ट्रस्ट के लिए कुछ पैसा चाहिए था, और उन बिजनेसमैन के विचार उनके प्रति अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो कोढ़ग्रस्त रोगियों की सेवा का मिशन चलाती थी जो हिंदू समाज के लिए में अच्छा नहीं माना जाता है। तो जैसे ही मदर टेरेसा ने अपनी बात कही तो वो व्यापारी को गुस्सा आ गया, और उनके मन में जो था वो उन्होंने कहा, जो काफी अपमानजनक था। लेकिन मदर टेरेसा चुप रहे, और जब उनकी बात पूरी हो गई तो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा, ये तो आपने मुझे दिया है, आप मेरे मरीजों को क्या दे रहे हैं? तो जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरी बात का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत उनके ट्रस्ट के नाम से चेक बना करके उनको दिया। तो स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि ये इनकी गलत फहमी है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे ही एक बार महात्मा गांधी जब ब्रिटिश टाइम में आजादी की लड़ाई चल रही थी, वो प्लेन में सफर कर रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, तो काफी ब्रिटिश यात्री थे उस प्लेन में, और जब उन्होंने गांधी जी को देखा तो उनके मन में आया कि ये अच्छा अवसर है। तो उन्होंने जो उनके प्रति उनके मन में था एक पेपर पर लिखा और उनको पकड़ा दिया। तो उन्होंने नजर डाली और वो समझ गए, तो उन्होंने उस पेपर पर एक पिन लगा हुआ था, वो पिन ले लिया और पेपर वापस कर दिया, कहा जो मेरे काम की चीज थी वो मैंने ले ली, ये मेरे काम की चीज नहीं है। तो हम स्वीकार नहीं करें, और यदि हम स्वीकार नहीं करते तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि जब वृक्ष फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी उसे क्या मिलते हैं, क्या मिलता है, मीठा फल। तो प्रकृति में भी एक गुण है कि वो पत्थर की चोट सह करके मीठा फल दे सकती है। तो क्या मनुष्य जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करे फिर भी वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, संभव है या नहीं है? संभव है लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, उसके लिए वो सहन शक्ति हमारे अंदर चाहिए, तब हम इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। और इसीलिए जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं इस संसार में, उनकी ये विशेषता थी कि उनके साथ किसी ने कैसा भी व्यवहार किया लेकिन उन्होंने सदा प्रेम, दया, क्षमा, करुणा का व्यवहार मानवता के साथ किया। ऐसे ही अगर किसी भी कारण से हमें गुस्सा आता है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम उसे पोस्टपोन कर दें। कई बार हम तुरंत रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, जो मन में आता है हम कहते हैं और करते हैं और उसके परिणाम बुरे होते हैं। लेकिन उस समय हम सोचे कि हम अपनी बात कहेंगे लेकिन अभी नहीं, कुछ मिनट के बाद। तो वो जो कुछ मिनट आपने उसको टाल दिया, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि सारी गलती उनकी नहीं है, कहीं मेरी भी गलती है, इसीलिए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों की ही गलती है, तो वो परमानेंट पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि इनकी गलती है और इनको बताना ही चाहिए, नहीं बताया तो ये फिर से वही गलती करेंगे, तो तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और हम वही बात कहते हैं लेकिन शांति से, थोड़ा अच्छे शब्दों में हम कहते हैं तो सामने वाले अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। अगर हम गुस्से में कोई बात कहते हैं तो उनकी गलती होगी तो भी वो नहीं मानेंगे और उसको सिद्ध करने लगेंगे और इसीलिए हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक बार ऐसे ही एक पति पत्नी थे, दोनों ही गुस्से वाले स्वभाव के थे। एक गुस्से वाला हो और दूसरा शांत स्वभाव का हो तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती है, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे तो घर में रोज कलह होता था, शांति होती थी। अब पति तो काम पर चले जाते थे, बहन घर में रहती थी तो बड़ा दुखी हो जाती थी। तो एक दिन उसकी पड़ोसन आई और उसने कहा कि बहन मैंने अपने घर में कथा रखी है, तो आप कथा में आना। तो गई वो कथा सुनने के लिए तो देखा एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनने के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं ये पंडित जी से अपने मन की बात कहूं, मुझे थोड़ी शांति मिलेगी। तो उसने पंडित जी से बात की और कहा पंडित जी ये मेरी समस्या है कि हमारे घर में रोज कलह होता है, इसका क्या कोई उपाय हो सकता है? तो उन्होंने कहा जरूर उपाय हो सकता है लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगी। तो उसने कहा हाँ आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो जब उसने हाँ कहा तो उन्होंने एक पानी की बोतल मंगाई और उसको दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं तो आप इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रख लेना, पानी पीना नहीं है, मुंह में रख लेना है, जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक पानी मुंह में रहेगा। अभी वो समझ गई, हाँ जैसे आप समझ गए, लेकिन क्योंकि वादा कर लिया था तो वो पानी लेके चुपचाप घर चली गई। अब ऐसे ही हुआ, रोज की बात थी, पति ने गुस्सा किया तो वादा किया था इसलिए पानी मुंह में रखा, बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। तो पति ने सोचा इसको क्या हुआ है, रोज तो ये बराबर जवाब देती है, आज चुप कैसे है? तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमको भी सुनने की आदत है, तो उन्होंने और जोर जोर से बोला कि ये भी कुछ बोले, लेकिन कुछ नहीं बोला उसने क्योंकि पानी मुंह में था, बोल नहीं सकती थी। ऐसे ही दूसरे दिन हुआ, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पति ने ट्राई किया, क्या सचमुच इसने अपने आप को बदल लिया है? तो एक दो बार ट्राई करके देखा तो भी उसने पानी मुंह में रखा था तो बोली नहीं। तो अब उनको पक्का निश्चय हो गया कि इसने अपने आप को बदल लिया है। तो फिर उनका ध्यान अपनी तरफ गया कि शायद मैं छोटी छोटी बातों में ज्यादा गुस्सा करता हूं, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शांत होने लगे और घर में सचमुच कुछ दिनों के बाद शांति हो गई और ये बहन इतनी खुश हुई कि ये गई उन पंडित जी के पास और उनको धन्यवाद दिया। कहा, मैं नहीं जानती कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, आपने सचमुच मेरे नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया है। लेकिन पंडित जी, वो पानी खत्म हो गया है। तो पंडित जी ने कहा कि वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी तो सिर्फ पीने का पानी था, लेकिन आपको सिखाने के लिए था। देखा, आप पानी से थोड़ा समय भी शांत रही तो कितने अच्छे परिणाम मिले। तो अगर आप सदा ही ऐसे रहोगी तो आपके घर में सदा ही शांति रहेगी। तो कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी ये कहानी तक ठीक है, सचमुच हम ऐसे कोई गुस्सा करता है तो हम चुप नहीं रह सकते, रह सकते हैं नहीं रह सकते, हम आपसे पूछते हैं रह सकते हैं नहीं रह सकते। जो समझते हैं मानो कोई हम पर गुस्सा कर रहा है किसी कारण से नाराज, यही सहन शक्ति है ना, कि कोई गुस्सा कर रहा है लेकिन फिर भी हम शांति से धैर्य से उनको जवाब देते हैं। तो जो शांत रह सकते हैं वो हाथ उठाइए। ये तो काफी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो ये आज का दिन याद रखिए आप, कि आपने वहां शिविर में हाथ उठाया था, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए ताली बजाइए। तो अगर इतना भी परिवर्तन आप यहाँ शांतिवन में राजयोग शिविर से लाकर के जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सहन करने की शक्ति हमारी योग अभ्यास से बढ़ने लगती है। जैसे ईसा मसीह को देखते हैं हम, महात्मा सुकरात को देखते हैं, महात्मा बुद्ध को देखते हैं, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा जो भी हुए हैं, ये सब स्पिरिचुअल लोग थे। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, हे पिता तू इन्हें सजा देना, सारी जीवन मैंने इनकी सेवा की और आज मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। लेकिन उस समय भी क्षमा भाव था और यही कारण है कि आज भी संसार के जितने भी गिरजाघर हैं ईसा मसीह की भगवान की तरह पूजा होती है, क्योंकि ऐसे गुण थे जो उनको उतना महान बनाते हैं, जो उनको ईश्वर तुल्य बनाते हैं। हम महात्मा गांधी को भी यूं ही महात्मा गांधी नहीं कहते हैं, उनके जीवन के भी अनेक प्रसंग हैं जो उनको महात्मा बनाते हैं। ऐसे ही एक बार वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में तीसरे दर्जे में थे, आप जानते हैं तीसरे दर्जे में तो बहुत भीड़ होती है, जनरल डब्बा था। तो एक युवक चढ़ा, उसके अंदर वो पान चबा रहा था और आप जानते हैं हमारे भारत में पान चबाने वालों को भी आजादी है, वो कहीं भी थूक सकते हैं और दूसरे देशों में नहीं थूक सकते हैं, फाइन हो जाएगा, लेकिन भारत में कहीं भी गंदगी की जा सकती है। तो वो पान चबाने वाला कहीं भी थूकता है, तो चबाते चबाते उसने थूका और उसको ये नहीं पता था कि उसकी नेक्स्ट सीट पर जो बैठा है वो महात्मा गांधी हैं, तो वो थूक उनके पैर पर पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उस थूक को पहुंच दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने कुछ कहा नहीं। इतने में स्टेशन आने वाला था, उस स्टेशन आया और गांधी जी के नारे लगाए जा रहे थे, गांधी जी की जय हो। और वो जैसे ही डब्बे से नीचे उतरे, लोगों ने उनके गले में फूल मालाएं डाली, उनकी जय जयकार कर रहे थे। तो अब इसको पता चला कि जिसके ऊपर उसने थूका वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गांधी जी का नाम तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था कि ये तो गांधी जी हैं। तो उसने मन ही मन सोचा कि सचमुच मैंने जैसा इनके बारे में सुना था ये वैसे ही हैं, इनका व्यवहार आम इंसान जैसा नहीं है। तो मन में जैसे एक श्रद्धा का भाव आता है, तो उसने कहा महात्मा गांधी की जय हो। उस समय वो महात्मा नहीं कहलाते थे, लेकिन उसने अपने मन से उनके लिए बोलना शुरू किया महात्मा गांधी की जय हो। तो सभी ने बोलना शुरू कर दिया महात्मा गांधी की जय हो। तो क्यों उसने महात्मा कहा? अगर वो भी एक आम इंसान की तरह व्यवहार करते, मानो किसी की थूक हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, अच्छी तरह उसको समझा देंगे, हाँ थूक का मतलब क्या होता है। तो अगर वो भी ऐसा ही करते तो वो कभी भी उनको महात्मा नहीं कहता। तो सहन शक्ति का अर्थ ये है कि किसी की कोई गलती अगर हो रही है या कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है जो हमारे पसंद का नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम उन्हें परिवर्तन की प्रेरणा देते हैं। हो सकता है कि तुरंत उनमें परिवर्तन ना भी आए, लेकिन आपके जीवन को देखकर वो समझ पाएंगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग मनुष्यों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके, समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सके। राजयोग अभ्यास से जो दूसरी शक्ति हमें प्राप्त होती है वो है समाने की शक्ति। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख से हमारा जीवन गुजरता है। लेकिन योगी अर्थात हर परिस्थिति में समान, निंदा स्तुति, जय पराजय, ये अति की स्थितियां हैं। या तो मनुष्य उसमें बहुत दुखी निराश हो जाता है, और यदि उसे बहुत लाभ प्रशंसा मिलती है, सफलता मिलती है, तो वो गर्व में आ जाता है। लेकिन हर स्थिति परिवर्तनशील है, कोई भी सदा नहीं रहने वाली, ना सुख सदा रहने वाला है ना दुख सदा रहने वाला है। और इसीलिए योगी स्थिर प्रज्ञ होता है। इसमें चित्र में दिखाया है जैसे सागर इतना विशाल होता है कि उसमें कितनी भी नदियां समाती हैं, कैसी भी गंदगी सागर में पड़ती है, लेकिन सागर में सब समा जाता है। वो कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता और उसकी सतह भी सदा स्वच्छ रहती है। जो हल्की वस्तु पड़ती है उसे लहरें उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और जो भारी वस्तु पड़ती है वो सागर के तले में चली जाती है, लेकिन सागर सदा स्वच्छ रहता है। तो ऐसे ही योगी का जीवन होता है। इस संसार में हम कितनी परिस्थितियों से गुजरते हैं, अच्छे बुरे लोगों से हम मिलते हैं, अच्छी बुरी बातों को हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम वही अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए सार्थक है। जिसे कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दही उड़ाए। यानी एक सज्जन पुरुष का स्वभाव कैसा होता है? जैसे अनाज साफ करने वाला सूप, वो उपयोगी अनाज को रख लेता है और सारे कचरे को फेंक देता है। तो हमें भी अपने जीवन में क्या ग्रहण करना है, क्या समाना है जो हमारे लिए उपयोगी और सार्थक है, बाकी सबको देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। समाने की शक्ति का दूसरा स्वरूप है, मानो कोई हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, उनको कोई समस्या है और वो हमारी राय चाहते हैं, तो वो हमसे पूरी बात कहते हैं और फिर कहते हैं, देखिए आप किसी को कहना नहीं, ये मेरी पर्सनल बात है। हमारा कोई अपना होता है जिसे हम वो बात कहते हैं और फिर वही कहते हैं कि आप किसी को कहना नहीं, ये उनकी पर्सनल बात है। ऐसे ही उनका कोई अपना होता है वो कहते हैं और फिर वही कि आप किसी को कहना नहीं, पर्सनल बात है। और जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है और कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कहने वाला कभी भी बात को वैसे नहीं कहता है। वो उसने क्या समझा, उसका क्या भाव उसे समझ में आया, वो भी मिक्स करता है। एक बार ऐसे ही एक छोटी कहानी हम आपको सुनाते हैं कि एक बार एक पंडित जी थे, उन्हें दूसरे गांव में जाना था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम रास्ते का भोजन मुझे दे दो, क्योंकि हो सकता है मुझे पहुंचने में देर हो जाए। तो उसने भोजन बना के बांध दिया। तो रास्ते में एक स्थान पर एक पेड़ के नीचे वो भोजन करने के लिए बैठे, और जैसे ही भोजन खोला एक पक्षी ने बीट कर दी। तो वो तो ब्राह्मण थे और उनके लिए भोजन अशुद्ध हो गया, तो उनका मन खराब हो गया और वो भोजन नहीं किया उन्होंने, और दूसरे गांव जाने का इरादा भी छोड़ दिया, वापस घर लौट कर आ गए। तो जब पत्नी ने देखा कि ये इतना जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ, ये गांव नहीं गए, तो पूछने लगी कि आप इतना जल्दी क्यों वापस आ गए, आप गांव क्यों नहीं गए। तो पंडित जी उसे बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपने पत्नी के स्वभाव को जानते थे कि अगर मैंने इसको सही कारण बताया तो पूरे गांव में फैल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो लेकिन उसने बहुत जोर दिया तो हार कर उन्होंने बता दिया कि ऐसा हुआ, जब मैं खाना खाने बैठा तो पक्षी ने बीट कर दी। तू किसी को बताना नहीं, तो उसने कहा मैं क्यों बताऊंगी। लेकिन स्वभाव था, अगले दिन कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो जो भी उसकी साथी वहां आती थी उनको उसने वो चर्चा कर दी कि ऐसे ऐसे हुआ। अब सब लोग एक जैसा नहीं सुनते हैं, किसी का आधा ध्यान कहीं और होता है, आधी बात सुनते हैं आधी नहीं सुनते हैं। तो एक ने ऐसे सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट के बजाय क्या गिर गया, पक्षी गिर गया। अब जब उसने दूसरे को सुनाई तो उसने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर जब वो फैली तो ऐसे फैली, पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार हो गया, तो पंचायत तक बात पहुंच गई कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। तो पंचायत ने उनको बुलाया, पंचायत ने तो जब पंचायत में वो पहुंचे तो उनको पता नहीं था कि मुझे क्यों बुलाया गया है। वो सोच रहे थे क्या हुआ जो मुझे पंचायत ने बुलाया है। और जब पूरी बात वहां जाकर समझी कि चमत्कार दिखाना है, मुंह से पक्षी निकलते हैं, तो सोचने लगे मुंह से पक्षी निकलते हैं, ये किसने कहा, ये कहां से बात आ गई, मेरे मुंह से पक्षी निकलते हैं। तो सोचने लगे और फिर उनको समझ में आया कि ये मेरे सब पत्नी का काम है, और उसने कुछ कहा और वो इस तरह से फैल गया। फिर सोचने लगे बचने का उपाय क्या है अभी। तो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि जरूर मेरे मुंह से पक्षी निकलते हैं, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जो वो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सब सभा छोड़कर भाग गए। तो देखिए हाँ क्या बात थी और बन क्या गई। ऐसा होता है जब कोई बात फैलती है तो इतने अनर्थ हो जाते हैं, और इसीलिए कहावत बनी घर का भेदी लंका जाए। हमारा भारत देश अनेक वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम रहा। इसका कारण भी यही था कि राजाओं के पास भेदिए होते थे जो दुश्मन को सारे राज खोल देते थे और उसके कारण ही वो हमारे देश में प्रवेश कर गए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के गुप्त राज वो बाहर चले जाते हैं इसी के कारण। घर परिवार में भी सास बहू हैं, मानो आपस में उनकी कोई कहा सुनी होती है तो बहू सास के सामने चुप रह जाती है, सहन कर लेती है, लेकिन जो दूसरे पड़ोस की बहू है वो उसकी सहेली है और उसके पास वो अपनी सारी बात कहती है, मैं कितना सहन करती हूँ, अगर मेरी जगह कोई दूसरी बहू होती तो कब की अलग हो गई होती, मानो इस तरह से बात कहती है। अब वो अपनी सास को सुनाती है कि पड़ोस वाली बहू कितना दुखी है। अब ये दोनों सास आपस में मिलती हैं, अब क्या होगा, वो सास उसको समझाने की कोशिश करेगी और जब वो सुनती है तो उसे लगता है मेरे घर की बात इसको कैसे पता है। अब जैसे ही समझ में आएगा आपस के संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे और संबंध कटु हो जाते हैं। तो समझने की शक्ति की कमी, जो बात जब कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए या कैसे कहनी चाहिए, किस भाव से कहनी चाहिए, आपसी संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो योग अभ्यास से वो गंभीरता हमारे जीवन में आने लगती है और इसीलिए हमारे संबंध बेहतर होने लगते हैं। तीसरी और चौथी शक्ति जो हमें योग अभ्यास से मिलती है वो है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमें परखना होता है और निर्णय भी लेना होता है, उचित है अनुचित है, हाँ या ना, करें या ना करें, दुविधा में हम होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में, जैसे एक जौहरी होता है उसे रत्नों की परख होती है, आभूषणों की परख होती है, तो उसे पता है कि खरा सोना क्या है और नकली असली रत्न क्या है, और इसीलिए वो अपने व्यवसाय में सफल होता है। वो उसका विशेष ज्ञान है जिसके आधार पर वो परख सकता है। तो ऐसे ही जीवन के जिस भी क्षेत्र में हम हैं, यदि उससे संबंधित विशेष ज्ञान हमारा संपूर्ण है तो हमारी परखने की शक्ति अच्छी होती है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में होता है तो बुद्धि स्वच्छ होती है, स्पष्ट होती है, तो हम व्यक्ति के भाव भावनाओं को भी परख पाते हैं। जैसे पानी जब साफ होता है तो हम तले तक देख सकते हैं कि उसके तले में क्या है, पानी अगर गंदा होता है तो नहीं दिखाई देता है। एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यापारी ने बहुमूल्य हीरे भेंट किए, तो राजा ने जब वो हीरे देखे तो हीरे बहुत सुंदर थे पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सच्चे हीरे हैं। तो उसने कुछ दरबारियों से पूछा तो दरबारियों ने कहा, महाराज हम नहीं समझ सकते कि ये हीरे सच्चे हैं या झूठे हैं, कोई इसका पारखी है वही बता सकता है। तो उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई, कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन वो भी समझ नहीं पाए, तो एक अंधा फकीर था वो आया और उसने कहा, महाराज मैं आपको बता सकता हूँ ये हीरे असली हैं या नकली हैं। तो राजा ने उससे कहा, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देता है, तुम कैसे बताओगे। तो उसने कहा, आप मुझे हीरे दीजिए, मैं सूर्य के प्रकाश में इनको रखता हूँ और मैं बता सकता हूँ। तो उसने सूर्य के प्रकाश में वो हीरे रखे और एक एक हीरे को उसने अपनी हथेली पर लिया और कुछ हीरे उसने अलग कर दिए। उसने कहा, ये हीरे असली हैं। तो राजा ने कहा कि तुम कैसे बता सकते हो। उसने कहा, महाराज मुझे पता है कि असली हीरे सूर्य के प्रकाश में गर्म नहीं होते हैं, नकली गर्म हो जाते हैं, तो जो गर्म नहीं हुए वो असली हीरे हैं। तो ये उसका विशेष ज्ञान, उसने उसको मदद की वो हीरों को परखने में। तो ज्ञान से हमारी परखने की शक्ति बढ़ती है, और आध्यात्मिक ज्ञान से आज व्यक्ति की मनोभावनाएं, वो अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं, आज का समय ऐसा है। तो कई बार उनके बोल से हम नहीं समझ पाएंगे उनको, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं उनसे हमें समझ में आ जाता है कि इनका भाव अच्छा नहीं है। इसीलिए इनके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, या जो भी निर्णय हम उनके प्रति लेना चाहते हैं वो हम सही निर्णय ले पाते हैं। निर्णय शक्ति को तराजू से दिखाया गया है, और तराजू के तीन भाग होते हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। यानी सही निर्णय के लिए ये तीन विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, कांटा सीधा, डंडा संतुलित और पलड़े बराबर। यानी मन एकाग्र हो, बुद्धि संतुलित हो और निष्पक्ष हो, तब हम सही निर्णय अपने जीवन में कर पाते हैं। यदि मन अशांत है, उलझन में है, तो हमारे निर्णय सही नहीं हो पाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति के प्रति हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, यानी उनकी बीती हुई बातों को हम स्मृति में रख कर के निर्णय लेते हैं, तो भी हमारे निर्णय सही नहीं होते हैं। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, हमारा मन शांत होता है, ईश्वर में एकाग्र होता है, और ईश्वर से हमें अंतः प्रेरणाएं भी मिलती हैं, मार्गदर्शन भी मिलता है, और किसी भी परिस्थिति में हम सही निर्णय ले पाते हैं। एक बार एक गांव का व्यक्ति था, और उसे अपने गधे को चराते हुए एक चमकीला पत्थर मिला, तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने वो पत्थर अपने गधे के गले में बांध दिया। अब उसको लेकर के जब वो गांव से गुजर रहा था, तो वो जिस गली से गुजरा वहां पर कुछ जौहरियों की दुकान थी, तो एक जौहरी की नजर पड़ी और उसे लगा कि ये हीरा है, तो वो दुकान से बाहर आया, उसने उसको रोका और हाथ लगा के देखा, तो बोला पत्थर तो बड़ा सुंदर है। वो समझ गया कि ये गधे वाले को ये पता नहीं है कि ये पत्थर हीरा है। तो उसने उसको कहा कि देखो ये पत्थर तुम बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेच सकता हूँ, मुझे 200 रुपए की जरूरत है, अगर तुम 200 रुपया दोगे तो मैं ये पत्थर तुमको दे दूंगा। तो उसने कहा 200 तो ज्यादा है, तुम 100 रुपए में ले लो, 100 रुपए में दे दो। तो उसने कहा नहीं, 100 में मैं नहीं दूंगा, 200 देना है तो दो, और वो आगे चला गया, उसने उसको 200 रुपया नहीं दिया। अब वो दूसरे जोहरी की नजर पड़ी, तो उसको भी लगा कि ये तो हीरा है, और वो भी बाहर आया और उसने भी उसको रोका और पूछा पत्थर बेचोगे? तो उसने कहा कि हाँ 200 रुपया दोगे तो मैं ये पत्थर दे दूंगा। तो उसने बिना कुछ कहे 200 रुपया उसको पकड़ा दिया। उसको पता था कि ये 200 रुपए का नहीं, ये तो लाख का हीरा होगा। तो उसने तुरंत वो हीरा उससे ले लिया। अब जो पीछे वाला जौहरी था, उसने सोचा ये तो मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, 100 रुपए के पीछे हीरा छोड़ दिया। तो वो उसका पीछा करते करते पहुंचा और कहा लो 200 रुपए और मुझे वो पत्थर दे दो। तो उसने कहा लेकिन अभी तो मैंने वो बेच दिया। तो उसने पूछा कितने में बेचा? तो बोला वही 200 में। तो वो आश्चर्य से उसको बोलने लगा तुमको पता नहीं था वो कोई पत्थर नहीं है, वो तो हीरा था, और तुमने 200 रुपए में बेच दिया उसको, लाख रुपए का हीरा तुमने 200 में बेच दिया। तो उसने कहा कि फिर तो मेरे से बड़े मूर्ख तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो हीरा है। हाँ तुमको तो पता था हीरा है, तो तुमने 100 रुपए के पीछे उसको छोड़ दिया। तो हमारे जीवन में भी कई बार जब सही समय पर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है। पांचवी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है राजयोग के अभ्यास से, वो है सामना करने की शक्ति। जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, उनका सामना हमें करना भी पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में किसी प्रियजन की मृत्यु होती है। कई बार वो मृत्यु, खासकर जब असमय मृत्यु होती है, मानो किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, या असमय पति की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के पश्चात वो इतना दुखी होते हैं कि कई दिनों महीनों तक वो सामान्य नहीं हो पाते। ऐसे लगता है कि उसके साथ उनका जीवन भी समाप्त हो गया। कई बार उनको दवाइयां खा करके भी अपना जीवन चलाना पड़ता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति ये समझता है कि ये शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था, तब तक वो हमारे साथ थी। कर्म संबंध समाप्त हुआ और वो आत्मा अलग नाम रूप से अलग स्थान पर अपना पार्ट बजाने के लिए जाएगी। अब हमारा फर्ज है कि हम उसके प्रति शुभ भावना रखें, उसे शांति का दान दें, क्योंकि ये भी शक्ति है कि जो चला गया वो लौट कर नहीं आने वाला है। लेकिन यदि हम दुखी होते हैं तो हमारा दुख उस आत्मा तक पहुंचता है, क्योंकि आत्मा हमारी भावनाओं को ग्रहण कर सकती है। भले ही वो शरीर छोड़कर चली जाती है, लेकिन हमारे भाव उस तक पहुंचते हैं और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक बार ऐसे ही एक भाई थे, उनका एक इकलौता बेटा, दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। एक ही बेटा था, बहुत प्यार था उनको अपने बेटे से, और उसकी मृत्यु के बाद कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो उसकी याद में रोते नहीं। कुछ महीने हो गए तो एक दिन वही बेटा उनको सपने में दिखाई दिया, क्योंकि कई बार ऐसी आत्माएं अपना संदेश सपने के माध्यम से देती हैं। तो उन्होंने देखा कि वो बेटा फरिश्तों की दुनिया में है और सभी के हाथ में एक कैंडल है, लेकिन उनके बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटी तुम्हारी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप रोज रोते हैं और आपके आंसू इस पर गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है, प्लीज आप रो नहीं। तो उनको समझ में आया कि मेरे रोने से मेरे बेटे के भविष्य जीवन पर असर हो रहा है। उसके दिन के बाद से उन्होंने रोना बंद किया। तो कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी हम सचमुच रोना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग सोचते हैं अगर हम रोएंगे नहीं तो इसका मतलब हमें उनसे प्यार ही नहीं था, तो क्या कहेंगे? रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए? जरूर जो आत्मा चली जाती है उनके न होने को हम मिस करते हैं, क्योंकि वो इतना समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन जो भी उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम पालन करें, उनको हम शांति का दान दें। लेकिन अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो वो दुख उस आत्मा को भी दुखी करता है। अन्य कई परिस्थितियां और भी आती हैं, मानो व्यापार में घाटा हो गया, कोई चोरी हो गई, आग लग गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, कई स्थितियां ऐसी होती हैं। तो एक ज्ञानी ये समझता है कि जो भी परिणाम मेरे सामने आ रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता। आपने अभी कर्म की गति पर पूरा विषय समझा है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसीलिए उन परिस्थितियों में भी हम अपना धैर्य बनाए रखते हैं, सहज भाव से उन्हें पार करते हैं और भविष्य के लिए भी हम सावधान रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं हमारा भला है। जो गीता में कहा, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो इस संसार की घटनाएं कुछ इस तरह से हैं कि मानो जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसका दूसरा पहलू हमारा उसमें कुछ भला भी है। इस पर शास्त्रों में एक बहुत अच्छी बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बुद्धिमान मंत्री था और वो अपने हर काम में राजा की सलाह लेता था, मंत्री की सलाह लेता था। तो एक दिन राजा की उंगली कट गई और उसने अपने मंत्री को दिखाया, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई है। तो अब आशा थी कि मंत्री जी कुछ सहानुभूति के शब्द कहेंगे, लेकिन मंत्री जी ने बोला, महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। और ये राजा को गुस्सा आया कि मेरा मंत्री मेरी उंगली कटने पर मुझे कहता है अच्छा हुआ, ये मेरा वफादार नहीं है। तो गुस्से में आकर सैनिकों को आदेश दिया, इनको जेल में बंद कर दो। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था। कुछ दिनों के बाद वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार का पीछा करते करते बहुत दूर घने जंगल में चला जाता है। आदिवासी कबीले के लोग उस जंगल में रहते थे। उस जमाने में कबीले वाले लोग अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए कई बार नर बलि चढ़ाते थे। तो वो ढूंढ रहे थे किसी मनुष्य को, तो ये राजा को पकड़ लेते हैं। और जब राजा पकड़ा जाता है और उसे समझ में आता है कि मुझे क्यों पकड़ा गया है, तो वो उनको समझाने की कोशिश करता है, मैं आपका राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाएंगे। तो आदिवासी कहते हैं कि हमारी बलि तो राजा जैसी, हमारी देवी राजा जैसी बलि पाके बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वो ले जाते हैं उसको मंदिर में और पुजारी देखता है, बलि का नियम है इसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए और ये राजा की तो उंगली कटी हुई है। तो ये राजा की बलि को देवी स्वीकार नहीं करेगी। तो वो कहता है इसको छोड़ दो, इसका अंग भंग है, देवी नाराज हो जाएगी। अब राजा छूट जाता है और वो राज्य की ओर लौट रहा होता है तो उसे मंत्री के शब्द याद आते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। तो उसने सोचा सचमुच आज उंगली कटी हुई थी, इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। अब जैसे ही वो राज्य में पहुंचता है, सबसे पहले मंत्री के पास सारी घटना सुनाता है और मंत्री जी को कहता है, मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात समझा नहीं, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो मंत्री ने कहा, नहीं महाराज ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि हमेशा मैं आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, और यदि मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती है, आप पहले ही समझ गए, इसलिए आपने तालियां बजा दी, तो हम दोनों ही बच गए। यानी देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बुरी घटना थी, लेकिन उसमें दोनों का ही भला छिपा था जो भविष्य के पर्दे में था। कई बार हमें वर्तमान में वो समझ में नहीं आता है, थोड़ा समय गुजरने के बाद हमें समझ में आता है कि इस घटना में मेरे लिए ये भलाई थी। कई बार ऐसी परिस्थितियां ही हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे जीवन में गुणों का विकास करती हैं। एक राजयोगी ये भी जानता है कि ईश्वर मेरे साथ है, हम जहां जब भी उस परमात्मा को याद करेंगे उनकी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं, और जब सर्वसमर्थ भगवान का हमें साथ होता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु का चक्रव्यूह में धोखे से जयद्रथ ने वध कर दिया और अर्जुन को पता चला, तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सायंकाल से पहले यानी सूर्यास्त से पहले यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को ही जिंदा चिता में जला दूंगा। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये इतना आसान नहीं है जो अर्जुन कह रहा है। तो उस रात को शिविर में जब सब विश्राम कर रहे थे तो कृष्ण अगले दिन के युद्ध की योजना बना रहे थे, क्योंकि वो अर्जुन के सारथी थे तो उनकी जिम्मेवारी थी। और जब कृष्ण की नजर पड़ी अर्जुन के ऊपर तो देखा ये अर्जुन तो सो रहा है। तो उनको विचार चला कि ऐसी प्रतिज्ञा करके ये निश्चिंत सो कैसे सकता है। तो उन्होंने उठाया उसको, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमको याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? तो अर्जुन ने कहा, माधव मुझे पता है मैंने क्या प्रतिज्ञा की है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप मेरे साथ हो और आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो भगवान हमारी चिंता करता है, यदि हम अपनी चिंताएं उसको दे देते हैं तो वो हमारी चिंता हर लेता है, हमारे मन को हल्का बना देता है और हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही छठी शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है सहयोग की शक्ति। आपने समझा, राजयोग में हम ये समझते हैं हम सभी आत्मा हैं और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं और इस तरह से आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं और ये पूरा विश्व एक परिवार है। चाहे फिर हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन सचमुच ये वसुधा एक परिवार कैसे है ये राजयोग समझने के बाद हमें समझने आता है। तो जहां हम आपस में एक परिवार के सदस्य समझते हैं वहां सहयोग की शक्ति बढ़ जाती है। सामान्यता हम समझते हैं चार छह सदस्यों का परिवार मेरा परिवार है, इनके प्रति मेरी शुभ भावना है, इनके प्रति मेरी सहयोग की भावना है, उनके प्रति ही हम सब कुछ करते हैं। लेकिन एक राजयोगी इस पूरे विश्व को परिवार समझता है और यदि किसी को भी आवश्यकता है और वो सहयोग दे सकता है तो अवश्य सहयोग देते हैं। और जहां सहयोग है वहां एक और एक 11 होते हैं। वैसे कहते हैं एक और एक 2 होते हैं, लेकिन सहयोग की शक्ति इतना बड़ा कार्य करती है कि वो असंभव को संभव बनाती है। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को आमंत्रित किया भोजन के लिए। उसका कारण था कि असुर हमेशा ब्रह्मा जी से शिकायत करते थे कि आप देवताओं का पक्षपात करते हैं। तो वो उन्हें ये सिद्ध करके बताना चाहते थे कि देवताओं में विशेष गुण है। तो शर्त रखी गई कि भोजन करते समय उनके हाथ बांध दिए जाएंगे, यानी वो अपनी कोहनी नहीं मोड़ सकते हैं। अब कोहनी नहीं मोड़ सकते तो कौर मुंह में कैसे डाला जाए। पर पहले असुरों को बिठाया गया और उन सबके हाथ बांध दिए गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया भोजन मुंह में डालने का लेकिन नहीं डाल सके, हार कर उठ गए। फिर देवताओं की बारी आई, उन्हें बिठाया गया। तो देवताओं ने सोचा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम खुद तो नहीं खा सकते हैं लेकिन हम दूसरे को तो खिला सकते हैं। तो उन्होंने निश्चित किया कि हम आमने सामने बैठ जाएंगे और एक दूसरे को खिलाएंगे। तो एक दूसरे को उन्होंने भोजन खिलाया और भर पेट सभी देवताओं ने भोजन किया। तो सिद्ध हो गया कि देवताओं में वो सहयोग का गुण था जो असुरों में नहीं, और इस तरह से असंभव को उन्होंने संभव कर लिया। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि भागवत में ये कहा गया, श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, लेकिन केवल श्री कृष्ण की उंगली नहीं थी, उसके साथ गोप गोपियों की एक एक उंगली भी थी। तो वास्तव में कोई ये पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, ये परमात्मा के कार्य की यादगार है कि जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं तो ये कलियुगी पहाड़ जिसे हम कहेंगे, इसे वो कोई जादू मंत्र की छड़ी घुमाकर खुद ही परिवर्तन करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उसमें आत्माओं के परिवर्तन का सहयोग होता है। उनकी एक एक उंगली उस कार्य में लगती है। एक उंगली का अर्थ है कोई तन से सहयोग कर सकते हैं तो तन से करते हैं, कोई मन से कर सकते हैं, कोई धन से कर सकते हैं, जो जिस तरह से ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन सकते हैं वो कार्य करते हैं। और इस तरह से ये जो विशाल कार्य है जो हमें असंभव लगता है, हम सोचते हैं क्या इतनी बड़ी दुनिया, क्या सचमुच बदल कर ये कलयुग सतयुग बन सकता है, बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो उसमें अगर सबका सहयोग होगा तो सर्व के सहयोग से ये संसार सुखमय संसार, सतयुगी संसार बन जाता है। एक बार एक ऐसे ही जंगल में आग लगी और सारे जानवर डर के भागने लगे, लेकिन एक छोटी चिड़िया थी जो झील पर जाती थी और चौंच में पानी भर के और तालाब पे वो आग पर डाल रही थी, तो और सभी जानवरों ने देखा तो उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे एक चिड़िया तुम क्या समझती हो, तुम्हारे चौंच भर पानी से ये जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे पता है नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में कभी भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो हाथियों ने ये सुना तो उनको लगा इतनी छोटी चिड़िया इतनी हिम्मत कर सकती है, हम तो आग बुझा ही सकते हैं। तो उन्होंने फिर झील पर जाकर सूंड में पानी भर के आग पर डालना शुरू किया और आग बुझ गई। तो आग किसने बुझाई? देखने में हाथियों ने आग बुझाई, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिली? उस छोटी चिड़िया से। तो ऐसे ही कई बार हम सोचते हैं हम अकेले इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई परिवर्तन कर लेंगे, उसे संसार में क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फर्क पड़ता है। हम जानते हैं इतिहास में एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प ने बड़े बड़े परिवर्तन लाए हैं। जब भारत की आजादी का संकल्प आया महात्मा गांधी को, वो अकेले थे। जब अंग्रेजों ने अफ्रीका में उनका अपमान किया, वो घड़ी थी जिसने उनको ये थॉट दिया कि मुझे भारत को आजाद करना है, और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कार्य किया तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ा और भारत आजाद हुआ। ऐसे ही जब परमात्मा शिव को विश्व परिवर्तन का ये कार्य प्रारंभ करना था और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बनाया, वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने दृढ़ता रखी, हिम्मत रखी, तो ये ईश्वरीय कार्य आज इतना आगे बढ़ा है और इतना विशाल रूप ले चुका है, और भविष्य में जरूर ये कार्य सफल होगा। जिस उद्देश्य से परमात्मा ने इसकी रचना की है, स्थापना की है, अवश्य वो होना है। सहयोग में इतनी बड़ी शक्ति है। ऐसे ही सातवीं शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, और आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं, विस्तार को सार में लाना और समेटना। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कछुआ है, एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और वो अपने शरीर को सुरक्षित रखता है उस कठोर खोल में। जब उसको खाना होता है, चलना होता है, तो वो अपने हाथ पैर बाहर निकालता है, मुंह निकालता है, खाता है, वापस अपने आप को उस खोल में समेट लेता है। और इस तरह से बाहर के वातावरण से, जानवरों से वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि जब चाहिए हम अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करते हैं, अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से कार्य में एकाग्र करते हैं, उसे कुशलता पूर्वक करते हैं, और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो मन बुद्धि को कर्मेंद्रियों को समेट कर हम आत्मा में स्थित करते हैं। आत्मा माना आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप जो देह से न्यारी है और आत्मा अपने स्वभाव में शांत है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो हम आत्मिक गुणों का अनुभव करते हैं। उससे हमें आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद मिलता है। हम सहज ही संसार की परिस्थितियों से न्यारे हो जाते हैं। यहाँ तक कि योगी अपने मन को इस संसार से भी परे परम धाम में स्थित कर सकता है। परम धाम में परमात्मा की याद में हम मन को स्थित करते हैं तो मन की स्थिति ऊंची हो जाती है। जैसे एक एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो नीचे के पहाड़, नदियां, बाधाएं उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो उनसे इतना ऊंचा है। ऐसे ही जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो इस संसार की परिस्थितियों से मन ऊंचा उठ जाता है और इस तरह से हम सहज ही संसार में रहते हुए भी न्यारेपन का अनुभव कर पाते हैं। तो जब चाहें हम शामिल हो जाएं और जब चाहें हम डिटैच हो जाएं, न्यारे हो जाएं, ये कला योगी के जीवन में होती है। ऐसे ही आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। हम सभी जानते हैं संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और इसीलिए कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन पूरे जीवन शायद इस सत्य को हम भूले रहते हैं। हम सोचते हैं जीवन शाश्वत है, चलने वाला है और मोह माया में विषयों में मन लगा रहता है। तो इस संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। आप मेरा तो मेरा है ही, लेकिन आपका भी कैसे मेरा हो जाए इस कोशिश में लगे रहते हैं, तो उनको हम कहेंगे स्वार्थी, आसुरी प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, आपका मुझे नहीं चाहिए लेकिन जो मेरा है उस पर तो मेरा अधिकार है, वो हम आपको नहीं दे सकते। सहज मानवीय स्वभाव इस प्रकार का होता है। जो तीसरे लोग होते हैं वो कहते हैं न कुछ तेरा न कुछ मेरा। इस संसार में ना तो हम कुछ लेकर के आए हैं और ना ही हम अपने साथ कुछ लेकर के जाने वाले हैं। तो इसे हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति कहेंगे। जो आध्यात्मिक होते हैं उनके विचार इस तरह के होते हैं और इसीलिए इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त है उसे हम अनासक्त रूप से प्रयोग करते हैं। और हम सभी जानते हैं कितना भी कोई मिलियनेयर क्यों ना हो, क्या वो अपने साथ एक पैसा भी ले जा सकता है? कितना भी धन संपत्ति हो, सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। कितना भी मेहनत से हमने कमाया हो लेकिन आज तक कोई नहीं ले गया। इसलिए सिकंदर महान के जीवन की घटना है कि बहुत कम आयु में उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु के समय उसने अपने वजीर को बोला मेरे हाथ कोफिन से बाहर निकाल देना। तो वजीर ने कहा क्यों ऐसा चाहते हैं आप? तो उसने कहा कि आज जब मैं इस संसार से विदा हो रहा हूँ मैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सिकंदर महान कहलाता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ? तो दुनिया को शिक्षा मिले कि इतना महान सिकंदर भी खाली हाथ इस संसार से गया। एक बार एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। एक मित्र उसके साथ उठता बैठता खाता पीता साथी था, दूसरा मित्र किसी दूसरे शहर में रहता था, तीसरा मित्र बहुत दूर रहता था, कभी कभी सालों में मिलता था लेकिन दोस्ती थी। तो एक बार वो गलत मुकदमे में फंस गया। उसने हत्या की नहीं थी लेकिन किसी ने हत्या के आरोप में उसे फंसा दिया और गवाहों से सिद्ध भी हो गया कि इसने हत्या की है, तो उसको सजा हो गई, उम्र कैद हो गई। तो उसने जज को अपील की कि मैंने हत्या की नहीं है तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? तो जज ने कहा कि अगर तुम कोई गवाह अपनी तरफ से पेश करोगे जो ये सिद्ध कर दे तो तुम्हारी सजा बदल सकती है, अन्यथा गवाहों से सिद्ध हो चुका है। तो उसने सोचा मेरे दोस्त हैं, वो मेरी गवाही देंगे, वो तो मुझे जानते हैं। तो सबसे पहले उसने अपने उस दोस्त को कहा जो दिन रात का साथी था, कहा दोस्त तुमको मेरी गवाही देनी है, मुझे सजा हो गई है ऐसे ऐसे। तो दोस्त ने कहा कि तुम मुझे कुछ और कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये कोर्ट कचहरी में जाना इससे तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उसने बहुत उसको समझाने की कोशिश की, तुम्हारी गवाही कितनी महत्वपूर्ण है, पर वो तैयार नहीं हुआ। तो वो बहुत निराश हुआ कि जिससे मुझे उम्मीद थी उसने ही मुझे ना कर दिया। फिर उसने दूसरे को पूछा तो दूसरे ने कहा दोस्त मैं तुम्हारी गवाही के लिए सिर्फ अदालत तक आ सकता हूँ, वो कटघरे में खड़े होकर के बोलना इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ा सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, वहां तो गवाही ही देनी है। वो भी तैयार नहीं हुआ, आप तीसरे से तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने सोचा पूछ लेते हैं। तो पूछा तो उसने कहा कि दोस्त मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हारी गवाही दूंगा, और वो आया और उसने उसकी गवाही दी। तो ऐसे ही आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। सबसे पहला दोस्त ये शरीर है, जीवन भर शरीर और आत्मा का साथ है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबसे पहले ये शरीर ही छूट जाता है। फिर दूसरा दोस्त संबंधी है जो अदालत तक यानी शमशान घाट तक अंतिम विदाई देने के लिए आ जाते हैं, जिनको हम मेरा समझते हैं वो वहां तक हमें अंतिम विदाई दे देते हैं। लेकिन जो तीसरा दोस्त है वो है हमारे कर्म, जो भगवान के दरबार में हमारी सच्ची गवाही देते हैं, वही आत्मा के साथ जाते हैं, वही संस्कार रूप में हमारे साथ होते हैं। तो एक योगी इस राज को जानता है और इसीलिए हम सारा समय केवल धन कमाने में, संबंधों के निर्वाह में या अपनी प्रवृत्ति में ही नहीं लगा देते, लेकिन कुछ समय हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकें, उसमें भी हम देते हैं। यही हमारी अविनाशी कमाई है जो जन्म जन्म की प्रारब्ध है। श्रेष्ठ कर्म हमें आज भी सुख देते हैं और आने वाले 21 जन्मों तक, आपने समझा कालचक्र के विषय में, आने वाले 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का आधार वर्तमान समय के सत्कर्म है, जो ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार हम कर्म करते हैं। और इस तरह से राजयोग अभ्यास से हमें जो शक्तियां मिलती हैं, इससे हमारे विकारों पर हमारी विजय होने लगती है। काम विकार को हम जीत पाते हैं क्योंकि हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति होती है जो देह की सीमाओं से परे है। क्रोध को हम जीत पाते हैं क्योंकि क्षमा, दया, प्रेम, करुणा, सहन शक्ति ये हमारे विकसित होने लगते हैं। लोभ को हम जीतते हैं क्योंकि स्वार्थी की बजाय हम परमार्थी बनते हैं। लेने की बजाय देने की भावना अधिक होती है हमारे अंदर, संतोष का गुण आने लगता है। मोह समाप्त होता है क्योंकि हमें पता है सब कुछ विनाशी है, अनासक्त भाव से हम प्रयोग करने लगते हैं। अहंकार समाप्त होता है, हम समझते हैं कि हम नमित हैं, करण करावन हार परमात्मा है, और इस तरह से नम्रता हमारे जीवन में आने लगती है। तो स्व परिवर्तन सहज होने लगता है, और जब हमारा परिवर्तन होता है हम जीवन में सुख शांति का अनुभव करने लगते हैं, तो हम परमात्मा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में भी पूर्ण सहयोगी बन जाते हैं। तो ये था राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियां। धीरे धीरे राजयोग अभ्यास से इन शक्तियों का अभ्यास, विस्तार, विकास हमारे जीवन में होने लगता है। ओम शांति।